वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय
चर्चा कर चुके हैं कल कि प्रहलाद महाराज ने सही मौका का फायदा उठाया, देखा कि अभी अध्यापक चले गए हैं अपने घरों में, तो थोड़ा बीच में समय है, अवकाश है, तो इसमें क्यों ना कृष्ण भक्ति का प्रचार किया जाए, क्योंकि मेरे मित्र तो बहुत मासूम हैं, अभी तक इतने दूषित नहीं है उनकी चेतना, हमारे अध्यापकों के उपदेशों से इतने दूषित अभी तक नहीं हुए हैं, मासूम होने के कारण वो अच्छी तरह से भक्ति के उपदेश ग्रहण कर पाएंगे, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। तो ऐसे सोचकर प्रहलाद महाराज ने उनके मित्रों से कहा, जबकि मित्र खेलना चाहते थे कि नहीं नहीं आओ बैठो, सारे मित्र सम्मान पूर्वक प्रहलाद महाराज के वाणी का श्रवण करने के लिए प्रहलाद को घेर के बैठ गए। तो प्रहलाद ने क्या कहा, ये सब प्रथम श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, और हम निवेदन करते हैं कि सभी भक्त इस श्लोक को कंठस्थ करें, और जब भी कोई आपसे बात करे घर में या आपके मित्र आदि, तो उनको ये श्लोक सुनाइए। जब कोई लोग कहेंगे ये थोड़ी उम्र है भक्ति करने की, तो उन्हें ये श्लोक सुनाइए। प्रहलाद केवल 5 वर्ष के थे जबकि उन्होंने ये उपदेश मित्रों को दिया था।
श्री प्रहलाद उवाच, कौमार आचरे प्राज्ञ
कौमार
कौमार
बाल्य
आज्ञा
बुद्धिमान व्यक्ति
बुद्धिमान व्यक्ति
धर्मान
धर्मान
वृत्ति परक कर्तव्य
वृत्ति परक कर्तव्य
भागवतान
भागवतान
जो भगवान की भक्ति है
जो भगवान की भक्ति है
इस जीवन में
दुर्लभम
दुर्लभम अत्यंत दुर्लभ
अत्यंत दुर्लभ
मानुषम
मानुषम
मनुष्य का
मनुष्य का
जन्म
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 तत्
वह
अपि
अपि
अध्रुवम
अध्रुवम
नश्वर
नश्वर
अर्थदम
अर्थदम
अर्थ से पूर्ण
अर्थ से पूर्ण
अनुवाद शिव रूपाठ द्वारा प्रहलाद महाराज ने कहा पर्याप्त बुद्धिमान को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ओम ज्ञान की विराम उपाय जी कह रहे हैं कि वैदिक सभ्यता का और वेदों का पठन करने का एकमात्र उद्देश्य है कि मनुष्य जीवन की सफलता को हम प्राप्त करें, जो कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय है या भगवान कृष्ण की भक्ति है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बचपन से ही तैयारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अंत में केवल हम भक्ति करेंगे और इसके पहले कभी नहीं करेंगे। इसीलिए तो उपाय जी कह रहे हैं कि बचपन से ब्रह्मचारी कहकर होना चाहिए, ये प्रशिक्षण बच्चों को देना चाहिए, फिर आगे चल के अगर वो गृहस्थ बने अच्छा गृहस्थ बनेगा। परंतु प्रभुपाद कह रहे हैं कि आजकल बच्चों को ब्रह्मचारी बनने का प्रशिक्षण देने की बात तो दूर है, आजकल लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि माँ अपने गर्भ में बच्चे की हत्या कैसे करे, और अगर किसी कारण से बच्चा बच भी जाए और उसका जन्म हो जाए तो उसे किस प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में प्रशिक्षित किया जाए, ये सोचा जाता है। और ये कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन है प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये इसलिए आरंभ किया गया है ताकि वो ऐसे जीवन से बचे जिसके फलस्वरूप उसे पशु जीवन प्राप्त हो। कम से कम ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है ये मनुष्यों को पशु जीवन से बचाकर एक ऐसे श्रेणी में स्थित कर देगा जहाँ से वो भक्ति आदि भी कर सके, और जो इसी जीवन में भक्ति पूरी तरह से कर सकते हैं वो तो वैकुंठ जगत में चले जाएंगे भगवान के सानिध्य में। तो इस पथ को भागवत धर्म कहते हैं, धर्मान भागवतान की है। तो इस धर्म को क्या कहते हैं? भागवत धर्म। ये कोई छोटा मोटा धर्म नहीं है जो कि बदला जा सकता है। इस भागवत धर्म का दूसरा नाम है सनातन धर्म। ये सनातन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सनातन मतलब जो शाश्वत है, जो कभी भी नश्वर नहीं होता, नश्वर नहीं है। अगर किसी धर्म का नाश होता है तो फिर वो सनातन धर्म नहीं कहलाता। अगर हमारे आराध्य देव नश्वर हैं और जिस आधार से हम आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, अगर वो नश्वर है तो फिर वो धर्म भी सनातन नहीं हो सकता, वो धर्म भी नश्वर है। आजकल ये देखा जाता है कि लोग अनेक उपाधियों को स्वीकार कर रहे हैं कि मैं इस धर्म का हूँ, उस धर्म का हूँ, परंतु उनका सोच विचार शरीर के आधार पर है, परंतु ये शरीर का तो नाश होगा ही होगा। और अधिकतर ये देखा जाता है कि लोग किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं और इसी को सनातन धर्म कहते हैं। कई लोग ऐसे प्रचार करते हैं कि सनातन धर्म का मतलब है कि आपकी कुल देवी या कुल देवता की पूजा आप करें और ये सनातन धर्म हो जाएगा, परंतु ये सनातन धर्म नहीं होता है। भगवद गीता में श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं सनातन धर्म का मतलब क्या है। सबसे पहले हमें जानना है कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, और आत्मा सनातन है या शाश्वत है, और हमारे भक्ति के उद्देश्य केवल भगवान कृष्ण होने चाहिए जो भी सनातन है। और जब आत्मा सनातन है, भगवान सनातन है, तो दोनों के बीच में संबंध भी सनातन है जो कि प्रेम का संबंध है, और इस सनातन संबंध को सनातन धर्म कहते हैं। तो सनातन जीव जब सनातन भगवान के साथ में अपने सनातन संबंध को जागृत करने का प्रयास करता है या कर पाता है तो इसे सनातन धर्म कहते हैं। इसके अलावा सनातन धर्म का कोई मतलब नहीं है। तो प्रभुपाद जी एक ऐसे धर्म को सिखाने आए हैं जो कि हमारे आत्मा के अंदर पहले से ही है, केवल हम भूल चुके हैं। और प्रहलाद महाराज भी इसी धर्म को सिखला रहे हैं जिसे भागवत धर्म कहते हैं, धर्मान भागवतान की है। प्रहलाद महाराज सच्चे धर्म का प्रचार करने आए हैं, कोई नश्वर धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं। ये धर्म प्रेम का धर्म है, भक्ति का धर्म है, और ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ होते हुए बहुत दुर्लभ है, नश्वर है, फिर भी अधर्म। प्रहलाद महाराज यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरे प्राज्ञ। प्राज्ञ मतलब तो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसे क्या करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, आचरे कब से करना चाहिए, कुमार अवस्था से। कौमार आचरे प्राज्ञ, किस चीज का आचरण करना चाहिए, धर्मान भागवतान की है, इस भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये मनुष्य मानुषम जन्म दुर्लभम, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। तदपि अध्रुवम अर्थदम, हालांकि ये अध्रुव है मतलब नश्वर है, फिर भी अर्थदम अर्थ से पूर्ण है, ये बहुत मूल्यवान है। कभी कभी हम लोग प्रचार करते हैं कि अरे ये शरीर कितने दिन रहेगा, है ना, ये शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। तो कोई कहेगा अगर ये शरीर नश्वर है तो फिर क्या फायदा, हम जो भी पशु शरीर में कर रहे वो भी यहाँ करते रहे, जब ये भी नश्वर है, पशु शरीर भी नश्वर है, पंछियों का शरीर भी नश्वर है, कीड़ों का शरीर भी नश्वर है, तो फिर क्या फर्क है। तो प्रहलाद महाराज कहते नहीं, हालांकि ये शरीर भी अध्रुव है, नश्वर है, फिर भी अर्थदम अर्थ से पूर्ण है, बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि इसी एक शरीर में, इसी देह में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य शरीरों में, अन्य योनियों में भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। मनुष्य जन्म कितना महत्वपूर्ण है, ये तो अनेक शास्त्र में बहुत कुछ इसके बारे में कहा हुआ है। भगवान कृष्ण के उद्धव को एकादश स्कंध में श्रीमद् भागवत की उपदेश देते हैं, हृदय हम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूल भत्वते तम कुमान भवाथिन्न तरे स आत्मा। وہ کہتے ہیں کہ میر دیہ مطلب یہ ذری مطلب نر یہ منشیہ دیہ آدم یہ سارے اچھے وردان پردان کرنے لائق ہے یہ اس یوگ ہے یہ منشیہ شریر یہ ہمیں سب سے اونچا وردان پردان کر سکتا ہے یہ بھگوان کی بھکتی ندیہم آدم سلبھم اور آسانی سے پراپت ہو جاتا ہے جو نمن شرینی میں کے یونی ہوتے ہیں ان کو کوئی تپسیا کرنی نہیں پڑتی منشی جنم پراپت کرنے کے لیے آپ نے کبھی سنا ہے یا دیکھا ہے کہ کوئی کچھ سال دلی تپسیا کر رہا ہے کہ مجھے منشی دیہ پراپت ہو جائے ہاں منشی کے بارے میں سنا ہے کہ منشی تپسیا کرتے ہیں کہ ہمیں ویکن جگت کی پراپتی ہو جائے ہمیں سورگ لوک کی پراپتی ہو جائے کسی اونچے یونی کی پراپتی ہو جائے پرنتو پشوؤں کو تو کبھی ایسے نہیں دیکھا ہے کہ پشو تپسیا کر رہے ہیں کہ ہمیں منشی یونی مل جائے نہیں اپنے آپ خود بخود آٹومیٹک مل جاتا ہے منشی دیہ ان کو اس لیے سلبھم پھر بھی سدربھم بھی ہے اتی درلبھ بھی ہے کیونکہ حالانکہ یہ اپنے آپ منشی دیہ پراپت ہو جاتا ہے نمن شرینی کی یونیوں کو پھر بھی اپنے سمے پر ہی وہ آئے گا سمے سے پہلے نہیں آئے گا ایسا نہیں ہے کہ یہ کیڑا سوچے کہ جلدی جلدی مجھے مل جانا چاہیے اپنے آپ ملے گا تو ابھی کیوں نہیں ملے نہیں اسے انیک یونیوں سے بھرمن کرنے کے بعد ہی وہ منشی دیہ پراپت ہو جائے گا اس لیے منشی دیہ پراپت کرنا یہ آسان ہے پرنتو درلبھ بھی ہے اس لیے برہم ویور پران میں وہ شلوک ہے اشتین چترشچیو لکشانستان جیو جاتیشو وہ کہتے ہیں کہ اس بھوتک جگت میں اشتین چترش مطلب 84 لکشان 84 لاکھ یونیوں میں جیو جنم لیتا ہے بھرمدھی پورشی پراپتیم مانوشم جنم پریا بھرمت بھی مطلب بہت بھرمن کرنے کے بعد 84 لاکھ یونیوں میں بھرمن کرنے کے بعد مانوشم جنم پراپت کے بعد اسے پراپت ہو جاتا ہے اسی لیے درلبھ ہے پر ملتا کیسے ہے سوبھاوک روپ سے اپنے آپ میں مل جاتا ہے تس ابھی ابلتام جاتا ہے تیشام آتمابھیمانی نام بڑا کانا اناشکیہ گوبند چرن سویم اس لوگ بھی پربھو پر کبھی کبھی کہا کرتے تھے اور ایسے مولیوان منشی دیہ پراپت کرنے کے بعد تب ابھی ابھلتام جاتا ہے جاتا ہے مطلب جنم لینا ابھلتام مطلب نہ دیکھنا نہ سمجھنا کہ یہ منشی دیہ پراپت کرنے کے بعد اس کا مولیہ کیا ہے یہ کتنا اچھا اوسر ہے یہ نہیں سمجھنا تب ابھی ابھلتام جاتا ہے شام آتما ابھیمانی نام اور ایسے لوگ جو ابھیمان کے کارن گھمنڈ کے کارن بھگوان کے شرن میں نہیں آتے ان کا جیون ویرتھ ہو جاتا ہے ورا کا نام اناشرت گوبند چرن ورا کا نام ورا تو مطلب جو مورکھ ویکتی ہے اناشرت آشرے نہیں لیتا ہے کن کا گوبند چرن بھگوان گوبند یا شری کرشن کے چرن کمنوں کا آشرے گرہن نہیں کرتا ہے ایسا ویکتی مورکھ ہے کیونکہ منشی دیہ پراپت کرنے کے بعد بھی ایسا سندر اوسر کھو بیٹھتا ہے تو یہ ہے منشی جیون کا مہتو کٹھوپنیشد میں بھی کہا گیا ہے اتشت جاگرت پراپت ورانت بودت اتشت اٹھو جاگرت ہو جاؤ جاگ جاؤ اب یہ تمہیں منشی جیون پراپت ہوا ہے وران پراپت وران نبودت نبودت مطلب جان لو تمہیں یہ وردان ملا ہے کون سا وردان ہے یہ منشی دیہ کا اس لیے اس کا پورا پورا فائدہ اٹھا لو کیونکہ منشی جیون میں ہی بھگوان کو پراپت کیا جاتا ہے ایسے شاستر میں انیک انیک شلوک ہیں منشی دیہ کے مہتو کے اوپر ہمیں کہ وہ دو تین شلوک ایسے بتائے ہیں جگہ جگہ گیتا میں ہو بھاگوت میں ہو ان پرانوں میں ہو اس میں ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم کتنے بھاگیشالی ہیں اس لیے کرشن بھگوان کہتے ہیں
سلبھم سدربھم، یہ سلبھ ہے اور دربھ بھی ہے، اور گرو جو ہے وہ کرنھار ہیں، کیپٹن ہے شپ کے. یہ ایک پلبم سکلپم، یہ ایک نوکا ہے جو انہیں بہت ساگر پار کرا کے لے جا سکتا ہے، اور ہر ایک نوکے میں ایک کپتان کو چاہیے جو نوکے کو چلائے گا. تو گرو وہ کرنھار ہوتے ہیں، وہ کپتان ہوتے ہیں جہاز کے. میم انکولین نمن سوتک کی ویتم، میرے جو اپدیش ہیں بھگوان کہہ رہے ہیں، مطلب شاستر، یہ کیا ہے؟ وہ ایسے ہوا ہے جو کہ اس نوکے کو، اس جہاز کو صحیح دشا میں دھکا مار کے لے جائے. دوسرے شبدوں میں یہ شاستر بھی ہمارے لیے مہتوپورن ہے. ایسا نہیں کہ کیول گرو، گرو کس آدھار پر بات کریں گے؟ شاستروں کے آدھار پہ بات کریں گے. گرو سادھو شاستر، یہ تینوں ہونے چاہیے. تو بھگوان شری کرشن اندر سے کہہ رہے ہیں کہ میرے شاستروں کا ہونا آوشیک ہے. جب میرے شاستروں کے انوسار جیون چلایا جائے گا تب جیون انتم لکش کی اور اچھی طرح سے بڑھتا جائے گا. اور جو ویکتی ایسے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے منشی دیہ کا، بھواپدھم نہ ترے پمان، پمان مطلب منشی، اس بھو ابدھم مطلب بھو ساگر کو پار کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے، آتمہا، آتم ہتیا کرنے والا آدمی ہے، وہ آتما کی ہتیا کرتا ہے. حالانکہ آتما شاشوت ہے، آتما کا کبھی ناش نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی یہاں آتمہا شبد کا پریوگ کیا گیا ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری آدھیاتمک چیتنا کو نشٹ کرتا ہے وہ ویکتی، اور پشو تلیہ بن جاتا ہے، اور منشی دیہ کو پراپت کرنے کی یوگی نہیں رہتا. اس لیے ایسے ویکتی کو آنے والے جنموں میں نیچ یونی مل جائے گی. پرنتو کوئی بھی ویکتی تھوڑی سی بھکتی اس منشی جنم میں کر لیتا ہے تو بہت فائدہ ہو جائے گا. کبھی وہ سوچے گا نہیں کہ اگر میں نے بہت غلطی کر لی، بھگوان کی بھکتی کر لی. ایسے ہوتا ہے کہ بہت ہی کاریہ کرنے کے بعد آدمی سوچتا ہے جیون کے انت میں، ارے میں نے بہت بڑی غلطی کر لی. لیکن ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ مرتیو کے سمے کوئی ویکتی سوچے میں نے بہت غلطی کر لی، میں نے بھکتی کی. ایسے کبھی نہیں ہوتا. اب انیک ایسے لوگوں سے ملے ہیں اور انیک ایسے لوگوں کے بارے میں سن چکے ہیں جو مرتیو کے سمے شوک کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ غلط کام کیا، میں نے ایسے چیٹنگ کیا تھا، دھوکہ بازی کیا تھا، میں نے بھگوان کی بھکتی نہیں کی تھی، میں نے اس کے خلاف برا ویوہار کیا تھا. پرنتو آج تک ایسے کوئی ویکتی نہیں ہے جو مرتے سے بھکتی کر کے پھر مرتیو کے سمے سوچے کہ ارے اگر میں نے پیسے کمانے کے لیے سمے کیا ہوتا کتنا اچھا، میں نے بھکتی کر لی. نہیں، جو بھگوان کا اچھا بھکت ہو جاتا ہے مرتیو کے سمے بھگوان کا سمرن کر کے ہی بڑے آنند سے اپنے پران کو تیارتا ہے، کبھی پچھتاتا نہیں ہے. اور مرتیو کے سمے، مرتیو کیونکہ عام طور سے بڑھاپے کے سمے ہوتا ہے، ہاں ویسے کبھی بھی ہو سکتا ہے، بچے کی مرتیو بھی ہو سکتی ہے، پرنتو ایک سادھارن دنیا کا نیم ہے کہ بڑھاپے میں ہی مرتیو ہوتی ہے. تو بڑھاپے میں اگر ویکتی کو چاہیے کہ وہ اس پرکار کی سوچے، بھگوان کا سمرن کرتے ہوئے پران کو تیارے، تو اسے پہلے سے ہی تیاری کرنی ہوگی. اگر کوئی ایسا ویکتی سوچے کہ چلو بچپن میں یوگ اوستھا میں ہم بہت بھوگ کریں گے، اور بڑھاپے کے سمے جب مرتیو قریب آئے گی اس سمے کیول بھگوان کا سمرن کریں گے، سوئچ چالو کر دیں گے، چلو سمرن ہو گیا، ہرے کرشن ہرے کرشن، اور پھر مرتیو آئے گی ہم بھگوان کے دھام میں چلے جائیں گے، ایسے سمبھو نہیں ہے. اس سمے میں اسے چالو نہیں ہوگا، وہ کرنٹ چلے جائے گا. ہم بھلے کوشش کریں ادھر ادھر گھمانے کے لیے، لیکن کرنٹ میں نہیں رہے گا اور بھگوان کا سمرن. کیونکہ ہم نے وائر ہی پہلے سے کاٹ دیا ہے، جو ارجا اتپن ہونے کا استھان ہے، جو پاور ہاؤس ہے، اس سے ہم نے کنیکشن کاٹ دیا ہے. تو کتنا سوئچ چالو کرے کیا فائدہ ہے؟ اس میں بجلی ہی نہیں ہے، کرنٹ نہیں ہے، تو کہاں سے وہ چالو ہو جائے گا؟ تو काटने का मतलब है कि हम भगवान से संबंध काट रहे हैं और जोड़ने का मतलब है कि भगवान से संबंध जोड़ रहे हैं अर्थात भक्ति कर रहे हैं। और जो व्यक्ति सोचते हैं जैसे दक्ष प्रजापति श्रीमद् भागवत में सोच रहे थे, नारद मुनि को डांट रहे थे कि आपने मेरे बच्चों को मेरे लड़कों को ब्रह्मचारी बनाया, मैं आपको श्राप देता हूं कि आप किसी एक जगह पर रह नहीं पाओगे। तो नारद मुनि ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा श्राप हमको मिला ताकि हम प्रचार करते घूमेंगे, अब एक जगह में रहेंगे नहीं, एक जगह में रहते हैं तो आसक्ति हो जाती है, अब हम घूमते फिरेंगे सब जगह प्रचार करेंगे भगवान की भक्ति का। तो दक्ष प्रजापति कहने लगे नहीं, ये सिद्धांत आपका गलत है कि बचपन में जो अवस्था में भक्ति करनी चाहिए। वैसे सही सिद्धांत ये है कि वैसे सबको भोग करना चाहिए बचपन में और जो अवस्था में, और भोग कर करके आदमी थक जाएगा बुढ़ापा बूढ़ा होते होते, समझ जाएगा कि ये केवल दुख का कारण है, ये भोग का जीवन खोखला है, इसके अंदर कोई दम नहीं है, तब उसकी बुद्धि परिपक्व हो जाएगी, साक्षात्कार हो जाएगा उसको कि ये बहुत ही जगत दुख का सागर है, तब बुढ़ापे में जाकर वो भक्ति करेगा भगवान की। तो प्रभुपाद जी इसकी इस सिद्धांत की कड़ी टीका करते हैं तात्पर्य, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, शराबी बार बार शराब पीने के बाद भी जब गटर में पड़ा रहता है बहुत दुख का अनुभव करता है फिर भी दूसरी बार जाके शराब पीते, ऐसे नहीं कि एक बार मार खाने के बाद एक बार गटर में पड़ने के बाद इतना दुख अनुभव करने के बाद वो सुधर जाएगा, केवल दुख का अनुभव करने से आदमी अपने बुरे आदतों को छोड़ता नहीं है, जब तक कि उसे कोई श्रेष्ठ एक आनंद या कोई कार्य नहीं प्राप्त होता वो निम्न श्रेणी के कार्यों को त्याग नहीं पाएगा, और निम्न श्रेणी के कार्यों की वजह से ही उसे दुख मिलता है। इसलिए हम ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल बुढ़ापा मिल जाए, बुढ़ापे की अवस्था आ जाए बस हम शुद्ध भक्त बन जाए, नहीं होता है। इसलिए एक संत ने कहा है, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम कुंडम वृद्धो याति कलित्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। वो कहते हैं अंगम गलितम, देखो इस व्यक्ति का अंग जो है शरीर बूढ़ा हो गया, फलितम मुंडम उसके बाल जो है सफेद हो गए, और दांत दशन विहीनम जातम तुंडम, तुंडम मतलब मुख में दांत भी नहीं रह गए, दांत सारे गिर गए, वृद्धो याति देखो जा रहा है वो बूढ़ा व्यक्ति, विहीनवार दंडम एक छड़ी लेकर डंडा लेकर जा रहा है चल नहीं पा रहा है उसका पीठ बका हुआ है, तदपि हालांकि ये उसकी दशा है मुंचत आशा पिंड, आशा का पिंड है, आशा का भंडार है, शरीर तो पिघल गया लेकिन मन अभी तक इच्छाओं को त्याग नहीं पाया। इसलिए ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि शरीर कमजोर हो जाता है तो मन भी इच्छाओं को त्याग देता है, ऐसे नहीं होता। जब तक कि मन को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है तब तक बुढ़ापे में भक्ति की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है। तो ऐसे लोग टालते रहते हैं भक्ति, अब पैसे कमाने के लिए कोई अवसर दीजिए कोई टालेगा, कोई नहीं टालेगा, कहेगा बाकी बात बाद में, अभी पैसे कमा लेते हैं बाद में हम बाकी देखेंगे, हर चीज को उसी समय करना चाहते हैं जिस चीज को मूल्यवान समझते हैं, केवल भक्ति को टालते रहते हैं, आज नहीं कल कल नहीं परसों, अब युवा अवस्था में नहीं शादी के बाद, शादी हो जाएगी नहीं बच्चे बड़े हो जाएंगे उसके बाद, बच्चे बड़े हो गए उनके बच्चे हो जाएंगे तब करेंगे, ऐसे टाल टाल के मृत्यु आ जाती है, फिर अगला जन्म अनेकों जन्म टाल के टाल टाल के इधर भौतिक जगत में कितने लाखों जन्म बिता देते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है इस भौतिक जगत में। और हर अवस्था में टालने की बात भी और एक संत ने कहा है, बाल्यस्तावत क्रीड़ा सकता है तरुणस्तावत तरुणी सकता है वृद्धोस्तावत चिंता सकता है परे ब्रह्मणी को पी न सकता है। कि बचपन में हम क्रीड़ा से आसक्त होते हैं, तरुण अवस्था में तरुण तरुणी से आसक्त होता है, तरुणी तरुण से आसक्त होती है, वृद्ध अवस्था में हम चिंता से आसक्त होते हैं,
कोई कारण भी ना हो तो सारी दुनिया की चिंता करते हैं कि दुनिया कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, आतंकवादी है, क्या है, क्या होगा। ये स्वभाव है वृद्धावस्था का कि वृद्धावस्था में आके आदमी चिंतित होने लगता है अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का, समाज का। तो ऐसे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक समय ऐसे ही इन अलग अलग आसक्तियों में चले जाता है। तो परे ब्राह्मणी कह अपि अनासक्त है, तो परे ब्राह्मण भगवान के बारे में आसक्त होने का समय कब है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर तो लाल ध्यान दे रहे हैं, कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवत आंदोलन, कि कुमार अवस्था से ये शुरू हो जाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए हमें। जितना देर करेंगे उतना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा अंतिम समय भगवान का स्मरण करने के लिए। इसलिए हर एक घर में चाहिए कि हम ऐसा एक वातावरण बनाएं जिससे कि घर के सारे सदस्य, यहां तक कि छोटे बच्चे भी इस भक्ति मार्ग का फायदा उठा पाए। हम कई बार आपसे निवेदन कर चुके हैं कि हर एक घर में कम से कम दिन में एक बार संकीर्तन और कथा होनी चाहिए। केवल उस समय नहीं हो जब आप सब मंदिर आ रहे हैं या कोई सत्संग में जा रहे हैं। अगर मंदिर में नहीं आ रहे हैं या सत्संग में नहीं जा रहे हैं तो घर में अवश्य कम से कम दिन में एक बार सारे परिवार के सदस्यों को एक साथ बैठ के संकीर्तन करना चाहिए और प्रभुपाद जी के ग्रंथों से थोड़ा पढ़ना चाहिए और हो सके तो थोड़ी माला जप करनी चाहिए। बच्चों का स्वभाव चंचल होता है, वो एक जगह बैठ नहीं सकते, इधर उधर उठते बैठते जाते हैं। पालकों को उनके पीछे इधर उधर नहीं जाना चाहिए, उनको बिठाना चाहिए, पहले थोड़े प्रेम से बिठाना चाहिए, कभी कभी डांटना चाहिए लेकिन बिठाना चाहिए। ऐसे संस्कार को मिलेंगे तो ये आगे चल के इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कवच बन जाएगा, बाहर से दुनिया के प्रदूषण से उनको बचा पाएगा। तो प्रहलाद महाराज अपने प्रचार का आचरण कर रहे हैं क्योंकि खुद प्रहलाद महाराज केवल 5 वर्ष के हैं इस समय, कुमार अवस्था के हैं प्रहलाद महाराज, जबकि वो उपदेश दे रहे हैं। और देखिए हमारे वैदिक इतिहास में कितने ऐसे उदाहरण हैं जहां छोटे छोटे बच्चे भी महान भक्त हो गए। प्रहलाद महाराज सबसे बड़े उदाहरण है और फिर ध्रुव महाराज है, ऐसे कितने उदाहरण हैं। फिर भी हमारे लोग कोई ना कोई टीका करते हैं, अरे इतने उम्र में ऐसे छोटी उम्र में क्यों कर रहे हो भक्ति, मतलब अज्ञानी है, कुछ जानते नहीं है। वास्तव में जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भक्ति करने से रोकता है वो बड़ी हिंसा कर रहा है उस व्यक्ति के ऊपर। जनसाधारण के मन में यह विचार है कि जब किसी के शरीर के ऊपर प्रहार किया जाए तो वो हिंसा है, अवश्य है हिंसा, या किसी को कुछ बुरे वचन कहा जाए, अपमानित किया जाए तो वो हिंसा है, वो भी अवश्य हिंसा है। परंतु सबसे बड़ी हिंसा क्या है, जब हम किसी को भक्ति से रोक देते हैं क्योंकि वो उसके आत्मा के प्रगति के मार्ग में एक बाधक बन जाता है, उसकी श्रद्धा टूट जाती है, उसका हौसला, उसका उसकी निष्ठा है वो खत्म हो जाती है। इसलिए आजकल क्योंकि लोग उनको कभी बचपन में ऐसा प्रशिक्षण नहीं मिला है, इसलिए वो अपने बच्चों को और अन्यों को रोकने का प्रयास करते हैं। आजकल प्राग ये देखा जाता है भक्तों के अनुभव से, रिश्तेदार मतलब भक्ति को रोकने वाले, जितना ही ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिसको ऐसे रिश्तेदार मिलते हैं जो प्रोत्साहन देते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज की तरह हमें भी हमारे मित्रों को, हमारे संबंधियों को प्रचार करना चाहिए प्रेम से, जैसे पहले कलम चर्चा कर रहे थे ना, हसमुख चेहरे से मीठे लक्ष्मणावाचा, मीठे शब्दों से प्रचार करना चाहिए कि किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। तो आइए आगे प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं सुन लें।
यथा हि पुरुषस्येह
विष्णु पादोपसर्पणम् यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत्।
प्रहलाद महाराज कहते हैं
ये मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है, अतः प्रत्येक जीव को विशेषतया उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय परमात्मा तथा सब जीवों के शुभ चिंतक हैं। तो भगवान विष्णु के लिए हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर ला दे रहे हैं। क्योंकि भगवान विष्णु सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत्। भगवान विष्णु सारे प्राणियों के प्रिय व्यक्ति हैं, सर्वभूतानां प्रिय आत्म ईश्वर है, आत्मा के भी स्वामी है, आत्मा के आत्मा है और सुहृत् आत्मा के शुभ चिंतक है। भगवान जितना हमारा कोई शुभ चिंतक नहीं हो सकता, इतनी चिंता भगवान हमारे करते हैं जितने शुभ चिंतक भगवान हमारे लिए है और कोई नहीं है। यह इस जगत में देखा जाता है कि कभी कभी माता पिता भी बच्चों को त्याग देते हैं जब बच्चा जो है बहुत ही हद से बाहर कोई काम कर देता है, लेकिन भगवान कभी भी आत्माओं को त्यागते नहीं है, हमेशा उनके साथ में रहते हैं परमात्मा के रूप में। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अनेक बार कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे बीजाभ्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। तो कहते हैं कि मैं तो उपद्रष्टा हूँ, अनुमंता हूँ, साक्षी हूँ, भर्ता हूँ मतलब मैं स्वामी हूँ, मैं शुभ चिंतक हूँ और आत्मा के साथ मैं हमेशा रहता हूँ। भगवान कभी आत्मा का साथ छोड़ते नहीं है। पर प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में भगवद गीता के प्रति श्लोक कह रहे हैं भोक्ताराम यदि तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति इच्छति। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में शांति चाहता है तो उसे इन तीन बातों को परिभाषित ही जान लेना चाहिए। वो क्या है कि भगवान ही भोग करने के अधिकारी हैं। दूसरी बात, जो भी हम यज्ञ करते हैं इनके फल भगवान को ही मिलने चाहिए और जो भी हम तपस्या करते हैं इस तपस्या केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि सच्चे सुख की खोज में जीव अनेक योनियों में अनेक वर्षों से अनेक ब्रह्मांडों में भ्रमण कर चुका है, परंतु क्योंकि वो अपने भगवान के साथ जो शाश्वत संबंध है उसको भूल गया है, इसलिए उसे क्या प्राप्त हुआ है इस भ्रमण के बाद, केवल दुख ही दुख। प्रभुपाद जी कहा करते थे हरेक व्यक्ति कृष्ण की खोज में है, फर्क इतना है थोड़े लोग जानते हैं थोड़े लोग नहीं जानते, बस इतना ही अंतर है। तो जो लोग नहीं जानते हैं अनेक जन्मों से भ्रमण करते 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 सुख की खोज में घूम रहे हैं, परंतु क्योंकि भगवान के साथ उनका जो संबंध है उसके बारे में ज्ञान नहीं है उनको, इसलिए वो केवल दुख ही प्राप्त कर रहे हैं। इस दुनिया में भी कई बार अखबारों में वगैरह पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति है बचपन में अपने भाई से बिछड़ गया और 40 साल के बाद उसे पुराना भाई मिल गया बचपन से इस बार, और फिर अखबार में आता है कि 50 साल के बाद ये दो भाई मिल गए, ऐसी सब कहानियां सुनने में आती हैं। ये एक भाई का जन्म यहाँ हुआ और कोई राजनीतिक कारण से या कोई युद्ध आदि की वजह से दूसरा भाई जो है किसी दूसरे देश में चला गया और फिर बूढ़े होने के बाद दोनों आके मिल गए और कितनी खुशी हुई सबको, ऐसी कहानियां सुनते रहते। परंतु देखिए हम ہمارے جو سچے متر ہیں, ہمارے سچے بھائی ہیں, سچے ماتا پتا ہیں, سچے بچے ہیں, سچے پریمی ہیں, وہ ہیں شری کرشن. ان کے کتنے جنموں سے ہم بھول چکے ہیں, بچھڑ گئے ان سے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ڈھونڈنے کے لیے. یہ منشی جیون کا ادیش ہے. اس لیے یہاں پر پروپاجی تاپوری میں کپل دیو کی وانی کا کو دہرا رہے ہیں, جبکہ کپل دیو کہتے ہیں یشام اہم پری آتما ستا چ سکھا گرو سمرو ہریو مشرم. کپل دیو کہہ رہے ہیں کہ ویکتی کو جاننا چاہیے کہ میں ہی جیو کا پری ہوں, میں ہی جیو کا آتما ہوں, میں ہی ہر ایک پرانے کا پتر ہوں, میں اس کا سکھا ہوں, میں گرو ہوں اور سہرد بھی ہوں اور اس کا اشٹ دیو بھی ہوں. سب کچھ بھگوان ہے, اس لیے ہمیں بھگوان کو ہمارا سب سے پریا ویکتی مان کر ان کی شرن میں جانا چاہیے, ان سے پریم کرنا چاہیے. اس جیون میں ہمارے کئی سمبندھ ہیں اور ان سمبندھوں کے اندر جو ہمارے کرتوی ہیں اوشیہ ہمیں پریم پورک کرنا چاہیے. پرنتو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی سمبندھ ہمارے یہاں پر ہیں وہ شاشوت سمبندھ نہیں ہے. پچھلے جنم میں ہمارا یہ پریوار نہیں تھا, اس کے پہلے والے جنم میں یہ پریوار ہمارا نہیں تھا. کیول اس جنم میں یہ تھوڑے آتما ہمارے ساتھ میں آئے ہیں, یہ بہت پتی پتنی بچے بھائی بہن ماتا پتا کہتے ہیں. کیول ایک جنم کی بات ہے, اتنے ہمارے جنم ہو گئے, یہ سب کہاں تھے جو اس جنم جن کو ہم یہ سب بلا رہے ہیں, بھائی بہن بلا رہے ہیں, یہ سب کہاں تھے پچھلے جنم میں؟ لیکن بھگوان کرشن تھے اور ہیں اور رہیں گے, کیونکہ بھگوان یہاں سوئم کہتے ہیں کہ وہی سروسو ہے, سب کچھ ہے آتما کے لیے. وہ آتما کے بھائی ہیں, آتما کے بہن ہیں, آتما کے پتا ماتا گرو اشٹ دیو سب کچھ ہے بھگوان. روپ گوسوامی پار بتاتے ہیں مسجد تامل سندھو میں کہ اگر ہمیں بھگوان سے پریم کرنا ہے تو انیک بھاؤں میں رتیوں میں پریم کر سکتے ہیں. کوئی ویکتی بھگوان کو اپنا سوامی مانے, اپنا پربھو مانے, کوئی ویکتی بھگوان کو اپنا متر مانے, کوئی بھگوان کو اپنا بچہ مانے, کوئی بھگوان کو اپنا پریمی مانے, کوئی بات نہیں. جتنے بھی سمبندھ یہاں سنسار میں ہم دیکھتے ہیں وہ سارے سمبندھ بھگوان کے ساتھ ستھاپت کیے جا سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ چاہے جو بھی ہماری بھاونا ہو ہم بھگوان شری کرشن کے چرن کملوں میں آشرے گرہن کریں, کیونکہ بھگوان آدی گرو بھی ہیں. ارجن بھی بھگوان شری کرشن کے متر تھے لیکن انہوں نے کرشن کو گرو بھی سویکار کر لیا. کارپن میں دو ٹھو بہت سبھاو پچا پچھا بندھن سمپور چیتا. انہوں نے کہا کہ اب میں کرپنتا کی وجہ سے اب بالکل بھرمت ہو چکا ہوں, شیشست ہم شادی مام پا پرپن نمسی, میں آپ کا شیش ہو گیا ہوں, آپ مجھے اپدیش دیجیے. تو کرشن بھگوان کو گرو سویکار کرنا چاہیے اور کوئی چاہے تو اپنا پتر بھی مان سکتے ہیں. ایک بار ایک بھکت آئے, وہ تھوڑے چنتت تھے کہ ہمارے میرے پاس کوئی سنتان نہیں ہے اور ہم ڈاکٹر کے پاس بھی گئے ہیں لیکن سنتان پھر بھی نہیں ہو رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ بھگوان کی کرپا ہے, ٹھیک ہے اگر سنتان ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں ہو رہے تو بھی ٹھیک ہے. کرشن بھگوان کو اپنا سنتان مانو, اپنا بچہ مانو, کیا نقصان ہے اس میں؟ اگر سنتان نہیں ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے بھگوان کی کوئی اچھا ہے؟ بھگوان چاہتے ہیں کہ چاہے آپ کے بچے ہو جاتے ہیں, آپ آسکت ہو جاتے ہیں تو ابھی آسکتی کا کوئی پرشن نہیں ہے. تو بھگوان جو بھی کرتے ہیں اچھائی کے لیے کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے بھی کوئی اچھا یہ جان لینا کہ آپ کے بچے نہیں ہو رہے ہیں تو بھگوان کو اپنا بچہ مان لو اور بھگوان کی پوجا کرو بچے کے روپ میں. اسکند پران میں یہ گھٹنا آتی ہے, ایک راجا تھے
नारद ने ये कहानी बताई कि राजा थे जिनका नाम था प्रभाकर, और राजा प्रभाकर से कोई संतान नहीं हुए, और राजा का संतान नहीं होना तो मुश्किल है, क्योंकि तो राज्य कौन चलाएगा, ये समस्या होती है। तो राजा प्रभाकर भक्त थे भगवान के, तो उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण को ही अपना पुत्र मान लिया, और यहाँ तक कि जब उनको वनवास पर जाने का समय आ गया तो कृष्ण भगवान की मूर्ति को ही उन्होंने सिंहासन पर बिठा दिया, राज्याभिषेक कर दिया और कृष्ण भगवान को राजा घोषित कर दिया, मेरे बेटे हो और राजकुमार, अभी तुम राजा बन गए, अभी तुम राज को संभालो, ऐसे भी तो कृष्ण ही संभालते हैं। उनको राज्याभिषेक करके राजा बना दिया, और कृष्ण ने कहा, मूर्ति ने, मूर्ति रूप में भगवान कृष्ण ने कहा, मैं आपका पुत्र हो गया हूँ, ऐसे इसका तो पुराण में वर्णन है। और एक कहानी आती है एक शिल्पकार की, जिसके पास कोई बच्चा नहीं था, तो नारद मुनि ने उसे उपदेश दिया कि नंद महाराज के चरण चिन्हों में चल के तुम कृष्ण भगवान को अपना पुत्र मानो, और फिर भगवान की मूर्ति को, गोपाल जी की मूर्ति को उस व्यक्ति ने अपना बच्चा मान लिया, अपना लड़का मान लिया, और उसकी सेवा, वो मूर्ति की सेवा उस भाव से करने लगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक जगह कहते हैं भागवतम में कि बंगाल में ऐसे कई घटनाएं हैं जहां ये देखा जाता है कि अनेक व्यक्तियों ने भगवान को ही अपना पुत्र मान लिया, और भगवान ने उस व्यक्ति के देहांत के बाद उसका श्राद्ध भी किया। वैसे जो भगवान का भक्त है उसे क्या श्राद्ध आदि की आवश्यकता है, श्राद्ध तो उन लोगों के लिए है जो पुनः जन्म लेंगे, है ना। जब वैकुंठ जगत में जाता है व्यक्ति तो श्राद्ध की क्या आवश्यकता है। श्राद्ध का मतलब है क्या है, पुन्नाम नरकात प्रायते इति पुत्र, जो पुत्र होता है जो अपने पूर्वजों को पुन्नाम के नरक से राहत दिलाता है, मुक्ति दिलाता है, वो पुत्र है। जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो नरक की बात तो दूर है, भौतिक जगत में भी जन्म नहीं लेते, वो तो सीधे वैकुंठ जगत चले जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि दुनिया की रीति है, दुनिया का रिवाज है, इसलिए भगवान ने भी इन भक्तों के लिए श्राद्ध कर दिया। तो देखिए क्या चाहिए हमें भगवान से, वो सब देखते हैं। आपको मित्र चाहिए, बच्चा चाहिए, प्रेमी चाहिए, क्या चाहिए, भगवान आपके सब कुछ बन सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे सबसे प्रिय व्यक्ति है, इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी है। ये तात्पर्य है। तो जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो ऐसे 84 लाख योनियों में बेचारा भ्रमण करता रहेगा, करता रहेगा, उस सुख की खोज में जो केवल भक्ति मार्ग में पाया जाता है। तो आप सब बुद्धिमान है, सुखी है, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण का, श्री राधा गोकुलानंद का आश्रय ग्रहण किया है, इस पद को स्वीकार किया है, इसलिए हमें सब अभी इतिहास में बड़े तीव्रता से, बड़े दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए और दूसरों को भी देना चाहिए। ये रथ यात्रा का जो समय है ये बहुत अच्छा मौका है इस प्रेम को दूसरों को देने के लिए, और अपनी भक्ति को स्प्रेड करने के लिए, और दूसरों को इस भक्ति मार्ग में लाने के लिए। तो आप में से जो भक्त ये सेवा कर रहे हैं रथ यात्रा में, छोटी सेवा हो बड़ी सेवा हो, हम आप सबके बहुत आभारी हैं, और आशा करते हैं कि ऐसे ही रथ यात्रा एक के बाद एक होते रहे, और रथ यात्रा के बाद भी यह भक्ति बड़ी जोरों से चलती रहे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।
प्रभु जी हम श्लोक में देखते हैं कि श्री प्रहलाद वाच या इस कंध में देखते हैं श्री हिरण्यकश्यपु वाच है, लेकिन भगवद्गीता में हम देखते हैं केवल अर्जुन वाच है, वहाँ पर श्री से संबोधित नहीं किया।
श्री का मतलब श्रीमान महोदय, इस दृष्टि सम्मान देने के लिए शब्द कहा गया, ठीक है, केवल इतना ही।
बच्चों में
जो माइक चालू कीजिएगा,
हेलो हेलो। बचपन में बच्चे पूजा करते हैं, थोड़ा भगवान को मानते हैं, बड़े होकर के वो जैसे बचपन में कितने साल वो करते हैं उसके बाद वो बड़े होके वो भूल जाते हैं या उस टाइम में नहीं करते हैं, ऐसा क्यों?
क्योंकि आजकल वातावरण बहुत दूषित है, वातावरण ही ऐसा है सच में। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऐसे लोगों का श्रम करते हैं जिनके ऐसे संस्कार नहीं है, और उस बुरे संग में जाके फिर कभी कभी वहां के आकर्षण ज्यादा गर्मान हो जाते हैं और उस ओर बढ़ने लगते हैं। फिर भी जो बचपन में उन्हें संस्कार मिले वो व्यर्थ कभी नहीं जाएंगे, एक न एक दिन वो बच्चा आएगा ही आएगा। केवल इतना है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि संस्कार इतने अच्छे हों, इतने बलवान हों कि संभावना कम रहे कि वो भक्ति पद को छोड़ के चले जाए। इसलिए बारंबार भक्तों के संग आना आवश्यक है। संस्कारों का मतलब केवल ये नहीं है कि घर में हम सिखलाएं, लेकिन मंदिर जैसे स्थान में आके ऐसे वातावरण में बैठ के कीर्तन में शामिल होना, प्रवचन सुनना, सेवा करना, ये भी बहुत जरूरी है। इसे वो संस्कार और दृढ़ता से हृदय में चित्त में बैठ जाते हैं। ये सुरक्षा का पद है। अगर हमें वास्तव में सुरक्षित होना है तो अपने आप को और अपने परिवार के सदस्यों को ये लाभ देना चाहिए, ऐसे संस्कार मजबूत हो जाएंगे। और प्रश्न किसी हरे कृष्ण
babies born in the age of trauma, so if he dies, then he doesn't have an opportunity to practice devotion. So what happens to his next life, whether he becomes a devotee or providing that nature?
Prashni ye hai ki agar kumar avastha mein hi bachche ka dehant ho jata hai aur use bhakti karne ka mauka nahi mila hai to phir kya hota hai? Wahi hoga jo ki bure vyakti ko hoga jab usne bhakti nahi ki. कुमार अवस्था में अगर किसी का देहांत हो रहा है तो वो भी प्रारब्ध है, उसके पूर्व के कर्मों के अनुसार ऐसे हो रहा है, तो जो पूर्व जन्म के कर्म है उसके अनुसार उसे और जन्म मिलेगा आगे चल। अगर थोड़े बहुत संस्कार उस बच्चे को मिले हो तो बहुत अच्छा, तो उस चाहे वो दो महीने, चार महीने, छह महीने, एक साल, दो साल के संस्कार जो मिले हैं उसका भी लाभ बहुत मिलेगा आगे चलिए। ये आध्यात्मिक बैंक अकाउंट जो है उसकी बढ़ती रहती है, केवल कभी घटती नहीं है। इसे बचपन में भी अगर किसी बच्चे को संस्कार मिले हो और बचपन में ही उसकी बच्चे की वृद्धि हो गई फिर भी कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है।
हरे कृष्णा, जैसे आपने बताया कि ये सत्य है कि इस जन्म जो रिश्तेदार होते हैं वो इसी जन्म के ही रहते हैं, तो ऐसे रिश्तेदार हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और किस हद तक उनको महत्वता देनी चाहिए?
महत्वपूर्ण अवश्य है, उनके साथ भी प्रेम पूर्वक संबंध होना आवश्यक है, लेकिन कृष्ण भावना वो जो संबंध है वो केवल भौतिक आसक्ति के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए, वो एक दिव्य भावना के ऊपर आधारित होना चाहिए कि ये भी कृष्ण के बच्चे हैं, कृष्ण के अंश, ये भी कृष्ण के भक्त हैं और मेरे निकट आए हैं तो भगवान कृष्ण उनको मेरे निकट भेजा है, तो इनका देखभाल करना, इनसे प्रेमपूर्वक संबंध बनाए रखना, ये भी मेरा कर्तव्य होता है। परंतु कृष्ण भावना में, तो कृष्ण भावना का वातावरण ऐसे निर्माण करना हमारे घर में जिससे कि परिवार के सभी सदस्य कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते रहे, ये हमारा कर्तव्य है। तो इस दृष्टि से हमें हमारे रिश्तेदारों से आदि संबंध को देखना चाहिए। और इसका कोई किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण।
तो जी मेरा प्रश्न ऐसे है कि जो भी यहाँ पे मंदिर का आता है बहुत सारे भक्तों के अपनी प्रॉब्लम से यहाँ पे आते हैं, जैसे उनका प्रॉब्लम खत्म होता है वो अपने भक्ति से अलग हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है?
आपका प्रश्न है कि कोई समस्या लेकर भगवान के पास आते हैं, जो समस्या से मुक्त हो जाते हैं तो भक्ति छोड़ देते हैं, ऐसा ऐसा क्यों? क्या ये प्रश्न है?
हाँ,
क्योंकि भक्ति के अभी तक परिपक्व नहीं हुए हैं, अभी तक भक्ति में कच्चे हैं, इसलिए चले जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं चले जाएंगे, फिर ये ठोकर खाएंगे फिर आएंगे।
और अब दूसरा प्रश्न, जब भी भक्ति करते हैं और डर के होती है, जैसे मन के या खुशी से,
पहले डर से हो या कुछ भी हो, आए तो सही पहले, फिर डर का परिवर्तन प्रेम में हो जाएगा धीरे धीरे। ज्ञान की शुरुआत है डर है, कम से कम डरे तो सही भगवान से। आजकल तो भावना है डर किसी से नहीं जाता है, तो कम से कम डरेगा तो भगवान के नियमों का पालन तो करेगा, करते करते धीरे धीरे से फिर वो प्रेम में बदल जाएगा, हो जाएगा।
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। कल का क्या प्रश्न था कि प्रभु महाराज वेणु से वेणु शरीर के मंत्र से पैदा हुए और उनका उदाहरण नहीं हुआ वेणु राजा वेणु का, लेकिन जबकि हरिकश्यप ने बहुत ही अत्याचार किए थे प्रहलाद महाराज पर, तो हरिकश्यप को कहा उद्धार हो गया, तो ऐसा मतभेद क्यों बताते?
हिरण्यकश्यप का वध भगवान ने अपने कर्तव्यों से किया, इसलिए हिरण्यकश्यप का सौभाग्य था। हिरण्यकश्यप इतने बड़े असुर बने कि भगवान स्वयं आकर उनको मार डाले, और जो भगवान के हाथ मारे जाता है उसका उद्धार होता है। और वैसे भी हिरण्यकश्यप हैं, ये कौन है? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये जय और विजय है मूल रूप से, वैकुंठ जगत के द्वारपाल है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दूसरी ओर वेद राजा जो है वो इस दुनिया का साधारण पापी व्यक्ति है, अपने कर्मों के अनुसार उसे राजा का पद प्राप्त हो गया, परंतु उस मौके का दुरुपयोग किया राजा वेण ने और उसे दंड मिला, ब्राह्मणों के हाथ मारे गया, परंतु ब्राह्मण की कृपा के लिए यहाँ कोई राजा चाहिए था, इसलिए मृत्यु महाराज से जन्म हुआ राजा वेण के शरीर से। और एक आखिरी प्रश्न हो माइक कहा है, माइक है प्रश्न ये है कि भागवत और स्मार्थ में क्या अंतर है? भागवत मार्ग केवल शुद्ध भक्ति का मार्ग है, स्वार्थहीन सेवामय मार्ग है ये, परंतु स्मार्ट पद्धति है जो कि भगवान से केवल संबंध नहीं है, उसमें सभी का संबंध है, ये देवी हो देवता हो कोई भी हो सबका संबंध है, और ये कर्मकांड को महत्व देता है। या तो फिर ज्ञान मार्ग को कर्म मार्ग या ज्ञान मार्ग को महत्व देने वाले होते हैं, परंतु भागवत मार्ग में भक्ति को महत्व दिया जाता है, बल्कि भक्ति ही है, कोई चीज नहीं। आखिरी प्रश्न कहा माइक कहाँ पे है?
जीव है भगवान का आवश्यक है, करेंगे का कहेंगे भगवान का है विश्व बरोबर युद्ध करें।
प्रश्न ये है कि अगर जीव भगवान का अंश है तो विष्णु ने क्यों युद्ध किया? कृष्ण ने
युद्ध करने को भगवान ने क्यों कहा?
भीष्मदेव को,
भीष्म के बराबर
अर्जुन को,
हाँ।
अर्जुन को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए क्यों कहा? जीव का अंश है ये तो अलग बात है, सभी तो जीव के अंश हैं, केवल भीष्म ही नहीं, दुर्योधन भी तो भीष्म के अंश है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन से युद्ध करने के लिए कहा, केवल भीष्म से नहीं, ये तो भगवान की लीला है। हालांकि भीष्मदेव भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, फिर भी वो दुर्योधन के पक्ष में थे, अधर्म के पक्ष में चले गए, तो इसका इसलिए हम ये उपदेश प्राप्त कर सकते हैं कि कोई अच्छा भी व्यक्ति हो अगर वो अधर्म का पक्ष लेता है, बुरे लोगों के साथ में रहता है, तो उसकी भी गति क्या होगी? तो इसका भी नाश निश्चित है। हालांकि विष्णु देव भगवान के भक्त होने के नाते इसलिए उनका नाश एक भौतिक व्यक्ति पर नहीं होता है, उनका तो उद्धार हो गया, वो तो भगवान के धाम में चले गए। और विष्णुदेव की भगवान की इच्छा से ही विष्णुदेव दूसरे पक्ष में चले गए, क्योंकि भगवान दिखाना चाहते थे, उदाहरण देना चाहते थे कि यदि कोई भी क्यों न हो, विष्णुदेव जितना तेजस्वी और शक्तिशाली भी क्यों न हो, अगर अधर्म का साथ देता है तो वो जीत नहीं सकता है। कल कहा जारी रखेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् उपाध की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्री श्रीमानंद की जय।